स्वामी नीति नामिने नमो विष्णु पादा कृष्ण प्रश्नाय भूतले माते भक्ति स्वामी नीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष अष्टदेशदारिण श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासी गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा निताय गौर हरि वो हरि वो हरि वो हरि बोल हरि वो हरि वो जय जय प्रभुपाद 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 जय जय ृष्णपाद परमहंस बलिराजकाचार्यवाइंद शिष्यमदरनाबिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिलवाद महाराज की जय अनंतकोटिवैष्णविंद की ग्रंथराज मत भागवतम नहीं है शिलवाद लीलामृत की जय निदाय गौर हरि विमनंदे दूसरा भाग नहीं है दूसरा भाग नहीं है तो पहला है हाँ जी पहला भाग पूरा हो गया हाँ? वहीं पर पढ़ना था अगर हम लोग कहीं से पढ़ेंगे चलेगा दूसरा भाग तो नहीं है यहाँ होना चलेगा अभी रंडो अमज्ञान दिविनंदस ज्ञानं जन सलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवार्षादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अध्याय 26 स्वामी जी का प्रस्थान क्योंकि आज एकादशी है प्रत्येक एकादशी को जैसे आप लोग जानते हैं ये हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जीवनी से हम लोग कुछ अंश पाठ करते हैं और ये इसलिए जरूरी होता है कि कदाचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रति लोग आकर्षित होते हैं लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति जब तक उनका आकर्षण नहीं चलता है तब तक उन भागवत के द्वारा आकर्षित व्यक्ति कभी भी उनका ये श्रवण या उनका कीर्तन उनके जीवन से छूट जाएगा या फिर श्रीमद् भागवतम का उनका पठन पाठन या श्रवण कीर्तन उनको पूर्ण फल प्रदान नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि इनका जानकार व्यक्ति जो श्रीमद् भागवतम को तत्व से समझते हैं ऐसे भक्त का आश्रय नहीं लेने के कारण वो उन महान श्रीमद् भागवतम के असली फल से इसलिए वंचित होता है क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा क्या प्राप्तव्य वस्तु है। इससे बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी उन भक्तों के आश्रय में जब श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन नहीं करते हैं तो देखा जाता है कि वो लोग श्रीमद् भागवतम से ये स्थिर करते हैं कि व्यक्ति को जन्म जरा व्याधि इत्यादि से छुटकारा प्राप्त करना अर्थात मुक्ति प्राप्त करना यही उद्देश्य उनके हृदय में स्थिर होता है लेकिन वस्तु तो श्रीमद् भागवतम का ही उद्देश्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाला है भगवान की भक्ति देने वाला है लेकिन वो तब तक नहीं होता है जब तक कोई भक्तों का आश्रय वो व्यक्ति नहीं ग्रहण करता है तब तक उनको ये पता नहीं चलता है कि श्रीमद् भागवतम केवल भगवत प्रेम प्रदान करने वाली वस्तु है क्योंकि प्रेमी जन का आश्रय नहीं है। अतः चाहिए कि उन भागवत के प्रेमी या भगवान के प्रेमी भगवान के जो भक्त है उन भक्त की जीवनी को पढ़े सुने। इसी से यह होता है कि श्रीमद् भागवतम का वो रहस्यपूर्ण तत्व जो द्वादश महाजन जानते हैं वास्तविक धर्म के परम सत्य को तो उनको व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा। इसलिए इन इस्कॉन केंद्रों में इस संस्था के संस्थापक आचार्य जो भगवान के महान भक्त थे और विश्व भर में जिन्होंने हरि नाम का प्रचार करते हुए भगवान के भक्त बनाए, तो उनकी जीवनी को ये एकादशी के दिन पाठ किया जाता है। तो इसके अनुसार आज हम लोग इन 26वें अध्याय का कुछ अंश का पाठ करेंगे। तो इसमें श्रील प्रभुपाद महाराज के बारे में जो कुछ बताया गया है तो उनको हम जानेंगे। प्रारंभ इन 26वें अध्याय का होता है जब प्रभुपाद जी उन सैन फ्रांसिस्को के हवाई अड्डे पर थे। तो उस टाइम अपने उन शिष्यों के साथ उनका कुछ बातचीत चलता है, यहां से प्रारंभ होता है। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर प्रभुपाद मुस्कुराते रहे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। जबकि भक्त समुदाय ने फूलों और कीर्तन से उनका अभिवादन किया। इस प्रकार जो पहले से भिन्न थे, वे एक छड़ी की सहायता से सीधे आगे बढ़ने लगे। प्रभुपाद को एक निजी मकान में जो नगर के उत्तर में स्टिंसन बीच में किराए पर लिया गया था, ले जाने के लिए जयानंद अपनी स्टेशन वेगन के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले वे सैन फ्रांसिस्को के राधा कृष्ण मंदिर में जाना चाहेंगे। जयानंद उन्हें 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट में ले गए। प्रभुपाद कार में से उतरे और उन्होंने छोटे स्तर पंख में प्रवेश किया जो प्रतीक्षा कर रहे भक्तों और अतिथियों से भरा था, और मुस्कुराते हुए जगन्नाथ विग्रहों के सामने उन्होंने सिर झुकाया और बिना एक शब्द बोले कमरे से बाहर आए और कार में बैठे और स्टिंसन बीच चले गए। मुझे लगता है कि श्रील प्रभुपाद महाराज को लेने के लिए जो भक्तगण इस हवाई अड्डे पर एकत्रित थे, तो वो प्रभुपाद जी को कहीं कार्यक्रम में ले जाना चाहते थे, लेकिन उनसे पूर्व प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं सबसे पहले भगवान का दर्शन के लिए जो यहाँ नया बनाया गया जो मंदिर है, उस मंदिर में मैं भगवान के विग्रह के दर्शन के लिए जाना चाहूंगा। तो भक्त लोग उनको वहां पर लेकर के गए। वस्तुतः एक भगवान का भक्त और कभी भी कहीं भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं पाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज का आचरण यहां दिखाई पड़ता है कि भगवान के प्रति उनका कितना लगाव है, अर्थात अच्छा विग्रह के प्रति वो कितना लगाव रखते हैं, तो ये उनके द्वारा प्रदर्शित हुआ। और वस्तुतः उनके जो अनुगामी हैं उनको चाहिए कि वो लोग भी इस प्रकार इन कृष्ण भावनामृत मंदिर को अपना समझते हुए उन मंदिर के दर्शन के लिए सदैव उनको ललायित रहना चाहिए। और जहां कहीं भी मंदिर, या कभी कोई बाहर गांव गए तो वहां पर उनको पूछना चाहिए कि इस्कॉन सेंटर है कि नहीं है, नहीं पूछना चाहिए, और उस सेंटर में रहने की व्यवस्था है कि नहीं। जब अपने घर छोड़ कर कभी व्यक्ति को जाना होता है तो सबसे पूर्व में व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि हम जहां जाते हैं वहां भक्तों का संगति मिलेगा कि नहीं। अगर हम भक्तों की संगति में नहीं जा रहे हैं तो सीधे हम माया में जा रहे हैं। ये भक्त लोग अपने जीवन से इस प्रकार अपनी जीवनी में प्रस्तुत करते हैं, उनके आचरण से कई शिक्षाएं मिलती है। या जैसे एक इससे हम दूसरी शिक्षा ये भी ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को प्रभुपाद जी के फॉलोअर बोलते हैं, उनको चाहिए कि हमेशा इस्कॉन सेंटर में अपने आप को रखे। जब कहीं भी जाते हैं तो उनको अग्रस्थान देना चाहिए रहने के लिए कि भगवान का मंदिर है, तब तक वो बाहर किसी के घर में न रुके। हाँ, वहां जगह नहीं है दूसरा बात है। तो बहुत सारी शिक्षाएं इससे मिलता है। ये भक्तों का सहज आचरण है कि इन भक्तिमय शिक्षा उनके पग पग पर, उनके कोई भी कार्य से ये भक्ति की शिक्षा देते हैं। उनको ही आचार्य बोला जाता है ना। और एक महान आचार्य है वर्तमान ये अर्वाचीन युग के एक महान आचार्य है, वो अपने आचरण से इस प्रकार दिखा रहे कि भक्त लोग दिखा रहे हैं कि भक्त लोग उनको ले जाना चाहते थे जहां उनको तय किया गया था जाना, लेकिन वो बोलते नहीं, सबसे पहले मैं जाऊंगा, इस सिटी में एक मंदिर हो गया है तो मैं मंदिर में जाऊंगा। भक्तों की जीवनी से कदाचित हम लोग भक्ति जितना सीख सकते हैं उतना भागवतम से भी हम नहीं सीख सकते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि हम लोग भागवतम का पाठ करते तो लीला कथाएं उसमें पाठ करते हैं, कभी उनके भक्तों का आचरण भगवान का देखते हैं, हम लोग लीलाओं का पाठ करते हैं, लेकिन वो लीलाएं पाठ करने के बाद भी उन भक्त का आचरण जब हमारे सामने नहीं रहेगा, तब तक उन भक्ति का कृपा जिस प्रकार कैसे जल्दी शीघ्र प्राप्त किया जाए, इसकी शिक्षा हमें नहीं मिलेगी। यद्यपि भागवतम भी भक्तों की संगति के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन भक्तों की जीवनी, भक्तों के साथ रहना, उनके व्यवहार को देखना, और वो देखने से व्यक्ति को भक्ति का जितना शिक्षण मिलता है, इससे तो चैतन्य देव कहे ना कि भागवत सुनिया भागवत स्थान है। अगर भागवतम को श्रवण करना है तो भक्तों की संगति में भागवतम का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि एक भक्त चलता फिरता भागवत है, भागवत से भक्ति प्रचारित होती है, भक्तों की जीवनी से भक्ति प्रचारित होती है, दोनों एक ही बात है। भक्ति का प्रचार श्रीमद् भागवतम करते हैं, और एक आचार्य महाभागवत भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी जीवनी प्रत्यक्ष भागवत है, उनका आचरण एक दृश्य भागवत है, लोग देख सकते हैं इन भक्तिमय आचरण को। और व्यक्ति जब व्यवहार में ली गई भक्ति को देखेगा तो वो उनके ऊपर ज्यादा उनके हृदय में असर छूटता है उनका, है कि नहीं? आप लोग क्या सोचते हैं? ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद महाराज ये सब शिक्षा अपने आचरण से दे रहे हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्रभुपाद जी का जीवनी, वो एक बार पुनः पढ़ ले। तुमने पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा ना, पढ़ लेना चाहिए, एक नियम बना करके उनको पढ़ लेना चाहिए, कम से कम एक बार तो इन आचार्य की जीवनी पढ़ना ही चाहिए, तब पता चलेगा आचार्य इसलिए कहते हैं आचरण करके आज चिनोती शास्त्रार्थम, शास्त्र का जो अर्थ माने सार है भगवान की भक्ति, आज चिनोती वो चवन करते हैं हम भगवान की भक्ति को, क्योंकि शास्त्र में भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु के रूप में निरूपित की गई है, लेकिन उनको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। तो उन भक्ति के आचरण जहां जहां लिखा है, एक साधु उनको ग्रहण करके आज चिनौती का अर्थ ग्रहण करता है अपने जीवन में, और फिर उनको अपने आचरण में उतार करके दूसरों को शिक्षा देते हैं। अतः उनको आचार्य कहते हैं। देखिए ये प्रभुपाद जी का जीवन है, आगे हम लोग पाठ करते हैं। ये तटी जो खड़ी चट्टानों की यात्रा इतनी चक्करदार और चढ़ाई वाली थी कि प्रभुपाद का जी में चलने लगा। पीछे की सीट पर लेटे जाने और जयानंद से गाड़ी धीरे चलाने से भी कोई खास लाभ नहीं हुआ। कीर्तानंद ने अनुभव किया कि प्रभुपाद जी के लिए स्टिंसन बीच से सैन फ्रांसिस्को मंदिर जाना बहुत कठिन होगा। लेकिन हो सकता है कि इससे अच्छा ही हो कि वे अपना सारा समय स्वास्थ्य लाभ करने में लगा सकते हैं। एक मंजिला छह कमरों वाला मकान था और जिसकी छत जापानी ढंग से की गई थी। बाहर सामने की ओर उसका नाम पेराडिसियो लिखा था। श्री प्रभुपाद ने देखा कि उसके सामने के अहाते में लान के आकर्षक सुंदर फर्नीचर के बीच भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा थी। ऐसा लगता है, देखो पेज में तो कोई अंतर नहीं है लेकिन छपाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एकाएक बात कहीं दूसरी और वो लिखी गई है। ये बातें प्रभुपाद जी कहीं जा रहे थे, लेकिन वो जब इंचरान चल रहे थे तो उनको लेकर के कार जिस प्रकार चढ़ाई में ऊपर घूम रही थी, ऐसा लगा भक्तों को कि वो जा नहीं पाएंगे। ऐसे हो सकता है कि उनको वापस ले जाया गया हो, किस कुछ लिखा नहीं उनके विषय में, डायरेक्ट को दूसरा बातचीत लिख रहे हैं यहां पर। खैर जो कुछ भी हो, तो कहते हैं कि वो एक मकान में प्रवेश किए जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। लान के अलंकार स्वरूप उनको रखा गया था। जब प्रभुपाद मकान में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुकुंद और उनकी पत्नी जानकी को प्रतीक्षा करते हुए पाया। वे नतमस्तक हुए और प्रसन्नता के मारे जानकी रो पड़ी। प्रभुपाद मुस्कुराए लेकिन वे धीमी गति से चुपचाप मकान के बीच चलते रहे। प्रशांत महासागर की ओर का उनके रहने का एक बड़ा कमरा जदुरानी कृत भगवान श्री विष्णु राधा और कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य के चित्रों से सजाया गया था। भारत में निर्मित जगन्नाथपुरी के चित्रों से भी वह अलंकृत था। प्रभुपाद का शयन कक्ष भी महासागर के सामने था और उसमें सरकने वाली खिड़कियां लगी हुई थी। दीवार पर शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक रूप चित्र था और राधा और कृष्ण के भी रंग चित्र लगे हुए थे। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले कि चित्र बहुत अच्छे थे। तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी को भक्त लोग उनका निवास स्थान पर लेकर के गए। उन्हें निवास स्थान का वर्णन यहाँ पाया जाता है कि किस प्रकार भक्तों ने अपने गुरु महाराज के लिए एक श्रेष्ठ जगह चुन करके उनको दिया। ये नहीं है कि अरे ये तो सन्यासी है तो कहीं भी वो सो लेंगे रह लेंगे, मच्छर भी है तो क्या तकलीफ है, वो तो पहुंचे हुए साधु है, उनको कहीं भी छोड़ दिया जाए। अच्छे प्रकार से व्यवस्था दी जानी चाहिए उन गुरुजनों के लिए या भगवान के भक्त के लिए। भगवान के सदृश उनका सम्मान, उनकी व्यवस्था, उनका आदर, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए जैसे भगवान का होता है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने से पूर्व जो ये बहुत आवश्यक होता है कि उनके भक्त की प्रसन्नता व्यक्ति प्राप्त करे। तो कुछ भी हो, श्रील प्रभुपाद महाराज के नए शिष्य होने के बावजूद भी ये बात समझ पाए भगवान श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से। अतः उन्होंने इस प्रकार का व्यवस्था किया था, उनके कमरे में उन राधा कृष्ण के चित्र रखे गए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फोटो, चैतन्य महाप्रभु का चित्र, जैसे बच्चे लोग अपने खंड में नहीं बेडरूम में उनका जो इच्छा है ऐसा चित्र लगाते हैं, नहीं पहलवानों का, कराटे वालों का या फिल्मी हीरो का जो बच्चे लोग को पसंद है। मैं देखा था एक जगह मुझे रुकने की व्यवस्था दी गई थी ऐसे कमरे में, वो लोग मुझे ऐसा कमरा दिया था बच्चे लोग का कमरा रहने के लिए, उसमें सब पोस्टर लगे हुए थे जो उनको प्रिय था। तो भक्त को प्रिय है भगवान, तो भगवान का फोटो वगैरह लगाया गया था उनके शिष्यों के द्वारा, गोपाल महाराज के शिष्यों के द्वारा, और वो चित्र को देख करके प्रभुपाद जी मुस्कुराए और कहा बहुत अच्छा चित्र है। कहते भक्तों में सहमति थी कि केवल कीर्तन और उपेंद्र प्रभुपाद जी के साथ रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। वे चाहते थे कि स्वामी जी शांतिपूर्वक रहे ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। तो आप लोग को ऐसे भी पता होगा कि बहुत बूढ़ी आयुष्य में प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और उनका स्वास्थ्य उन जलदूत से ही बिगड़ा हुआ था, जिस जहाज से वो गए तभी से वो बिगड़े हुए स्वास्थ्य के साथ गए थे। अब कैंसर 70 साल की आयुष्य में स्वाभाविक स्वास्थ्य कभी भी अप डाउन हो सकता है, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये देखा जाता है। तो वो कह दिया गया होगा भक्तों को कि कोई ज्यादा लोग प्रभुपाद जी से न मिले, केवल एक दो जो उनके शिष्य हैं तो वो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके साथ रहे, ऐसा निश्चय किया गया था। उस रात में प्रभुपाद जी के दिल में पीड़ा हो रही थी, उनके हृदय में पीड़ा हो रही थी और वे सो नहीं सके, तबियत नादुरुस्त के कारण सो नहीं सके और अनुवाद करने के लिए सवेरे नहीं उठे। 5 बजे कीर्तानंद उनके कमरे में आया और उसने खिड़की थोड़ी सी खोल दी जिससे प्रभुपाद को मंद सागर समीर मिल सके, एक स्वस्थ हवा मिल सके, इसलिए खिड़की खुली गई कीर्तानंद के द्वारा। तो प्रभुपाद अपने बिस्तर में उठ बैठे और भगवान श्री कृष्ण और राधारानी के चरणों की ओर देखते हुए जप करने लगे। पूर्व की ओर दिशा में एक पर्वत श्रृंखला से अवरुद्ध होने के कारण सवेरे का सूर्य अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्रभुपाद को लकवा लगने के दिन से कीर्तन नित्य सुबह शाम उनकी मालिश किया करते थे। ये बहुत ज्यादा नादुरुस्त तबियत उनकी थी उस समय का, ये विवेचन या उनकी जीवनी पाठ जो हम कर रहे हैं वो उसी समय का है। सत्सुदास गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो प्रभुपाद जी के सिर की जोर से मालिश करते और फिर उनके पीछे बैठकर उनकी पीठ की मालिश करते और तब उनकी छाती बाहें और उनके चरण की मालिश करते। पूरी मालिश में कभी कभी उसे 1 घंटे से अधिक समय लग जाता। अस्पताल छोड़ने के दिन से प्रभुपाद हर दिन सवेरे टहलने भी जाते थे, लोअर साइड में भी वे ऐसा करते थे और उस दिन सवेरे में कीर्तन रूपेंद्र के साथ सागर तट पर टहलने गए। तो ये स्वास्थ्य लाभ करने के लिए श्रील प्रभुपाद महाराज का नियम था कि वो रोज सवेरे चलने के लिए निकल जाते थे। तो कुछ शिष्य का झुंड उनके साथ चलता था हमेशा, जहां भी जाते थे वहां पर उनके शिष्य रहते थे, क्योंकि वो शिष्य लोग ही उनको बुलाते थे प्रवचन इत्यादि के लिए। तो ये कह रहे हैं कि उनके कई शिष्य उनके साथ सवेरे के प्रभुपाद जी के जो कार्यक्रम था चलने का, तो उनके साथ चल रहे थे। जब प्रभुपाद सागर तट पर टहल रहे थे तो उन्होंने अपनी छड़ी से रेत में उठते हुए बुलबुलों की और संकेत किया और कहा देखो जीवित प्राणी सर्वत्र है, कोई जगह नहीं है जहां जीवित प्राणी ना हो, और फिर भी वे कहते हैं कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है। ये कुछ वैज्ञानिकों लोगों को लक्ष्य करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहां जो चल रहे थे तो वह उन पानी में से कुछ बुदबुदे निकल रहे थे, वो समुद्र तट पर चल रहे थे, वो पृथ्वी और पानी तट पर ऐसा होता है ना, कभी जलचर प्राणी अंदर बालू में है तो इस प्रकार बुदबुला उठ रहा था। उनको देख करके उन्होंने कहा कि देखिए सर्वत्र प्राणी रहते हैं, जीव सब जगह रहते हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं चंद्रमा पर जीवन नहीं है, क्योंकि उस टाइम लोग चंद्रमा पर जा चुके थे और उन्होंने ये निर्णय दिया था कि यहाँ कोई जीवन नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि ये ठीक बात नहीं, कहने का अर्थ ये है तब चट्टानदार था, तब चट्टानदार था और तटीय चट्टानों पर लहरें वज्रपात के समान टूटती थी। इस सागर जब लहरें उठ करके उन लहरें उन पत्थर की चट्टानों पर पड़ती थी, ये कह रहे हैं तुम ये आवाज सुन रहे हो, सुन रहे हो? प्रभुपाद जी ने पूछा। ये गोपियों की धड़कनों की प्रतिध्वनि है, वे कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रही है। प्रभुपाद जी ने कहा सागर के आवाज को सुन करके, ये गोपियों की धड़कनों की प्रतिध्वनि है, उन चट्टानों से पटक करके जो पानी वापस जाता था उनमें से कुछ जो आवाज निकल रहा थे निकल रहा था, इन आवाज को प्रभुपाद जी एक भक्त होने के कारण वो ये उनके चित्त में जो तरंगे उठती थी उन तरंगों को वो कह रहे हैं। तो सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि भक्त का दृष्टि जहां पर पड़ते हैं वहां पर वो कृष्ण का स्पुरण होता है, ये उदाहरण है। क्योंकि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, उस स्थावर जंगम सब कुछ वस्तु को देखते हुए भी वो वस्तु को नहीं देखते, मूर्ति माने उनका उनका जो स्वरूप है उनको नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? अपने इष्ट की स्फूर्ति उनको सदैव रहती है, वो कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तो देखिए वो समुद्र तट पर घूम रहे थे और हम लोग मंदिर में भी घर को सोचते हैं ना, ऐसा होता है, और चिंता के कारण पानी चला गया होगा तो लेडी लोग ये सोचती है, और जेंट्स लोग अपने बिजनेस के लिए सोचते हैं, अरे बहुत टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, अभी जाना चाहिए, ट्रेन छूट जाएगा, टाइम पे नहीं गए तो। तो हमारा चित्त स्वाभाविक इन भौतिक कामना के कारण, भोगों की कामना के कारण वही व्यवस्था, उन भोगों की व्यवस्था में हमारा चित्त लगा रहता है। लेकिन एक भक्त का चित्त देखिए कहाँ है, सदैव भगवान में रहने के कारण। देखिए समुद्र से कुछ आवाज उठ रही थी तो बोलते गोपियों की धड़कन है। अब कोई ऐसा प्रसंग नहीं था, ऐसा क्यों एकाएक बोल देंगे ऐसा बात, और उनके बाद कुछ बातचीत नहीं है उनके विषय में। अतः ये देखा जाता है कि हमेशा भक्त का चित्त भगवान में लगा रहता है, प्रतिक्रम उनका उठना बैठना उन सब समय उनका चित्त भगवान, और हम लोग सब समय मंदिर में भी भोग की व्यवस्था थी, जिस दिन तो विग्रह को प्रार्थना करते हैं लोग कुछ व्यवस्था करके दीजिए अच्छी प्रकार से, सुख संपत्ति घर आवे इत्यादि बोलते रहते प्रार्थना में लोग बोलते हैं। लोग मंदिर ही इसलिए जाते हैं, कभी कभी जो कच्चा पक्का भक्त है तो वो लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, ठीक से चलेगा थोड़ा धंधा बंदा ठीक से चले और भगवान का हम ध्यान रखेंगे, भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। सुनिश्चित फिर भी भगवान ध्यान रखते ही है, जो लोग भजन नहीं करते उनका ध्यान भगवान नहीं रखेंगे, उनका जीवन नहीं चलेगा। वो तो भगवान गाली देने वालों को भी ध्यान रखते हैं, तभी तो उनका जीवन चलता है। आप चकित हो जाएंगे कि गाली देने वालों को तो कौन ध्यान रखता है, जैसे ये संसार में नहीं होता है, मनुष्य नहीं करता है, वो गाली देने वालों का क्या ख्याल करते हैं? ये ख्याल करते हैं जब भी मौका पड़ते तो उनकी निंदा कर लेते हैं, है कि नहीं? अरे हमको गाली देने वाला व्यक्ति है, हमारा शत्रु है, निंदा कर लेते हैं, तो उनका भला सोचेंगे? नहीं ना, नहीं, भगवान उनको गाली देने वालों के जीवन की व्यवस्था, उनके जीने की सारी व्यवस्था भगवान के द्वारा होती है। ये चकित कर देने वाला ये बात है, लेकिन ये स्वभाव है। और ठीक भगवान के जैसा स्वभाव उनके भक्तों का होता है। वो एन केन प्रकार, वो भगवान में उनका चित्त होने से उनको जो आनंद मिलता है, वो आनंद सबको वितीर्ण हो चाहते हैं। एक भक्त तो किसी भी प्रकार से उपदेश के द्वारा, किसी भी प्रकार से आचरण के द्वारा उनको वो अपना आनंद बांटना चाहते हैं, उनमें भागीदार बनाना चाहते हैं। और ये भी जगत में नहीं है, देखिए आश्चर्य का बात है, जो जब व्यक्ति का सुख का दिन होता है तो अपने परिवार वालों के साथ सुख भोगना चाहते हैं, और दूसरा कोई मेहमान भी आता, अरे कहां से आ गया है, तो हमारे लिए व्यवस्था थी और ये फिर हिस्सा बांटने के लिए आ गया, ऐसा हो जाता है। यद्यपि भक्तों के हृदय में यह नहीं होता है, भक्त सोचते हैं कि भक्त हमारे घर में आते हैं तो उनके लिए जो हमारे पास अच्छा चीज है उनको रखना चाहिए। जिनकी भक्ति कुछ थोड़ी बड़ी चढ़ी है और जिनका हृदय उन्होंने निष्काम हुआ है भक्ति के प्रभाव से, तो वो लोग में इस प्रकार की भावना उदित होती है। तो ये भगवत भाव है, सब सुखी रहे, गाली देने वाला भी सुखी रहे, ये तो ये भगवत भाव है। और जब जब करते हुए व्यक्ति भक्त बनता है तो इन भावों को डेवलप करता है, भगवान के भाव को पकड़ता है। तो वसुधैव कुटुंबकम बुद्धि, पूरी पृथ्वी पर जितने जीव है उन सारे प्राणियों को वो अपने हितैषी समझते हैं या उनका सुयद बनने की चेष्टा करते हैं भक्त लोग। तो ये जो बात है वो एक भक्त के हृदय का चिंतन का बात है। देखो भगवान का भक्त भगवान का हृदय में चिंतन करते हैं, वो कैसे मालूम पड़ते हैं? देखिए उनकी बात से मालूम पड़ता है, वो चलते फिरते हृदय में जो है वो बाहर निकलेगा। अगर हृदय में कामना है तो कामना बाहर निकलेगा। एक दिन प्रभुपाद जी किसी ने प्रश्न किया था कि प्रभुपाद जी मन में क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे ग्लास में कुछ प्रवाही व्यक्ति है तो कैसे पता चलेगा कि उनमें तेल है कि पानी है कि घी है, क्या है, कैसे पता चलेगा? तो एक भक्त ने कहा कि जब उनको उल्टा किया जाएगा तो पता चलेगा, तो बाहर जो वस्तु निकल वही अंदर है। बोले ठीक है ऐसे ही, बोले मन में क्या है बाहर आचरण में आएगा, व्यवहार में आएगा। तो बाहर व्यवहार में दिखने वाला जो बात है वो मन का बात है। देखिए तो भगवान के भक्तों का हृदय भगवान के जैसा है, वो सुखी है, इसलिए वो सुख का विस्तार करने वाले हैं। वो बाहर भी गोपियों का बात सुनकर के, भगवान का बात सुनकर के भक्तों का चित्त भगवान में लगता है। और इस संसार में एक क्षण मात्र नहीं, क्षण से भी आधा क्षण भी भगवान का स्मरण जीव को देना ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि निरंतर लिंक से जीव केवल भगवान से अलग होकर के अपने भोगों की इच्छा करता है और इसी से वो ज्यादा दुखी होते हैं।
तो दुखमयी वस्तु को सुख समझ करके जो बुद्धि ये सोचती है कि दुख को ही सुख समझती है, तो वो कठिनाई में सुख का उनके हृदय में संचार कठिनाई से होगा। और सुख मात्र भगवान की स्मृति है, भगवान का स्मरण ही जीव के लिए परिपूर्ण सुखदायक वस्तु है, भक्त जानते हैं। तो दो तरीके से लिया जाएगा, एक तो भक्त का मन कैसा है वो आउट हुआ उपाधि से, देखिए क्या शिक्षण आचार्य लोग अपने आचरण से, या वो शिक्षा देना चाहते हैं क्या, अनुक्षण जहां भी रहते हैं वहां पर भगवान का स्मरण कीर्तन इत्यादि चल सकता है। आइए दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। संध्या समय प्रभुपाद जी ने कीतान और उपेंद्र को बड़े कमरे में बुलाया और मंद ध्वनि में उनके साथ हरे कृष्ण और गोविंद जय जय कीर्तन किया। तो उन दोनों को बुला करके प्रभुपाद जी ने कीर्तन चालू किया। वे कमरे में एक बड़े वृत्त में उनके आगे आगे चलते रहे। कृष्ण के चित्र के सामने रुककर हाथ जोड़े हुए वे नतमस्तक हो जाते हैं और फिर मुड़कर वृत्त में चलने लगते हैं। ये कीर्तन का शैली है, जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो चलते हुए आगे पीछे घूमते हुए कीर्तन करते हैं, इस प्रकार उनका कीर्तन चलता रहा। 8 जुलाई को जब प्रभुपाद पैराडिसियो में 2 दिन बीता चुके थे, श्याम सुंदर और मुकुंद सैन फ्रांसिस्को से वहां कार से पहुंचे। लगता है कि कोई ऐसी जगह में प्रभुपाद जी है कि वो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए केवल गए हुए हैं। अगला दिन रथ यात्रा का था और श्याम सुंदर और मुकुंद ने जो प्रभुपाद जी के स्टेशन बीच पहुंचने के बाद उनके पास आने वाले पहले भक्त थे। उन्हें रथ यात्रा की तैयारियों के बारे में बताया। निस्संदेह पूरा उत्सव प्रभुपाद जी के विचार की उपज था और सैन फ्रांसिस्को के भक्त ठीक वही करने की कोशिश कर रहे थे जो प्रभुपाद ने उनसे करने को कहा था। उत्सव का विचार प्रभुपाद जी के मन में पहले पहल तब आया जब वे फ्रेडरिक स्थित अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। समतल फर्श वाले ट्रकों को नीचे सड़क पर गुजरते देखकर प्रभुपाद जी के मन में आया कि किसी एक ट्रक पर जगन्नाथ विग्रह को आसीन कर अमेरिकी ढंग का एक रथ यात्रा उत्सव मनाया जा सकता था। लगता है पहली बार जो रथ यात्रा का विचार प्रभुपाद जी के मन में आया उस समय की ये घटना है। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाला जाए, और उन्होंने एक ऐसे ट्रक का एक ऐसा ढांचा बनवाया था ट्रक का जिसके पिछले भाग में 4 खंभों के ऊपर चंद्रमा टंगा था और जो पताकाओं घंटियों और फूलमालाओं से सजा हुआ था। और उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाकर कहा था कि रथ यात्रा के लिए ऐसी गाड़ी तैयार करो, ढांचा दिया था कि इस प्रकार होना चाहिए। अब वैसे ही एक गाड़ी फ्रेडरिक स्ट्रीट में मंदिर के बाहर खड़ी थी जो पीले रंग की भाड़े की एक हर्टर्स तक थी और दिगर्स की ओर से दी गई थी, कोई व्यक्ति होगा उनकी ओर से ट्रक किराए पर किया गया था। तो उसमें 5 फुट वाले खंभे लगे थे और जिन पर पिरामिड स्टाइल कपड़े का चंद्रमा तना हुआ था, मतलब बीच से उन कपड़ों को चारों ओर उन छत की चारों ओर लगा दिया गया था और बीच से खंभा देकर के उनको ऊंचा किया था। तो इस प्रकार का ये ट्रक था। तट पर प्रभुपाद के साथ बैठे हुए मुकुंद ने उन्हें बताया कि सभी भक्त किस प्रकार बड़े उत्साह से कार्य में लगे थे और हेट ऐश्वरी के हिप्पी किस प्रकार अगले दिन निकलने वाली जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में
बातें कर रहे थे। वो दो भक्तों ने आकर के बताया कि प्रभुपाद किस प्रकार हम लोग की तैयारी को देख करके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाला है उसके विषय में भक्त लोग बता रहे हैं। भक्तों का प्रयत्न था रथ यात्रा का जुलूस गोल्डन गेट पार्क से निकले, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से उन्हें केवल फेडरिक स्ट्रीट से नीचे की ओर सागर तट जाने की अनुमति थी, सागर तट पर जाने की अनुमति थी। मुकुंद ने बताया कि भक्तों की योजना थी कि जगन्नाथ चंद्रवो के नीचे ट्रक की दाई ओर देखते हो, सुभद्रा पीछे की ओर और बलभद्र बाई ओर। बस जानना चाहते थे कि क्या यह ठीक होगा। हे रथ यात्रा के पूर्व के उन सब विग्रहों को एक एक दिशा में एक दूसरी दिशा में बैठा दिया जाए कैसा रहेगा, प्रभुपाद जी को पूछने के लिए आए। प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में विग्रहों को अलग अलग गाड़ियों में निकालना चाहिए जिन्हें रस्सियों से बांधकर जनसमूह सड़कों में खींचता चले। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में तीन रथ निकलते हैं, प्रभुपाद जी उसी प्रकार सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि आगे के वर्षों में यह संभव हो, जैसे अभी जुहू मंदिर में हो रहा है ना तीन रथ में रथ यात्रा। तो पहले के प्रभुपाद जी का माइंड को देख करके भक्त लोग उसी प्रकार अभी रथ यात्रा इत्यादि निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से नया तीन रथ टांग लिए। जगन्नाथपुरी में भी ये हम लोग पाते हैं तीन रथ का रथ यात्रा निकलता है। इसे अच्छे ढंग से करना प्रभुपाद जी ने आगाह किया, जल्दी मत करना। भक्तों को चाहिए तक को सड़कों में धीरे धीरे चलाकर समुद्र तट पर ले जाए और कीर्तन लगातार करते रहे। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा गया कि प्रभुपाद जी ने बाद में क्या जवाब दिया, ये नहीं बताया गया। सत्सव महाराज के द्वारा उनकी सोच बताई गई कि इसी प्रकार रथ यात्रा निकलना चाहिए। मुकुंद और श्याम सुंदर ने जयानंद का यश गाया और दोनों प्रभुपाद जी को कहने लगे कि वह अनुदान फल और फूल इकट्ठा करने के लिए सारे सेंट फ्रांसिस्को में घूमता फिरा, बता रहे थे। उन जयानंद प्रभु एक ऐसा व्यक्तित्व है, आज भी आप रथ यात्रा की ओर फोटो देखते ना, अभी छोटा सा परिसर का रथ यात्रा में देखा जयानंद प्रभु का फोटो था। बहुत मेहनत किया था, ये पहला रथ यात्रा जब निकलने जा रहा था तो उन्होंने इतना मेहनत किया। यद्यपि वो सामान्य एक वर्कर थे, कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी उनकी कमाई होती थी वो केवल भगवान में लगा देते थे, उनकी सेवा में लगा देते। और खास करके ये रथ में बहुत मेहनत किया था। तो ये श्याम सुंदर और मुकुंद अपने गुरु महाराज को बता रहे हैं उनके विषय में। उसने तक सजाने वाले को खोज निकाला, तक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया और स्टोरों में जा जाकर इत्तहार बांटे। और वह अथक था, वो इतना प्रयास कर रहे थे, बिना थके हुए प्रयास प्रयत्न कर रहे थे जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, और उनका उत्साह हर एक को भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। महिलाएं दिन भर चपाटियां बनाने में लगी रही थी और फलत जन समुदाय में बांटने के लिए हजारों चपाटियां तैयार की गई थी। अच्छा भक्त लोग बता रहे प्रभुपाद जी को, भक्तों ने हजारों हरे कृष्ण रथ यात्रा उत्सव गुब्बारे तैयार किए थे और जिन्हें जुलूस शुरू होने पर सड़कों पर छोड़ा जाएगा। जब भक्तों ने पूछा कि उन्हें और क्या करना चाहिए, ये सब बता करके प्रभुपाद जी को पूछा, तो प्रभुपाद बोले कि यही यथार्थ था, जुलूस प्रसाद वितरण और कीर्तन। प्रभुपाद की तबियत ठीक नहीं थी इसलिए वो शॉर्ट में बता देते, लोगों को भगवान जगन्नाथ के दर्शनों और हरे कृष्ण कीर्तन का अवसर मिलना चाहिए, सबको कीर्तन का अवसर और भगवान के दर्शन का अवसर, भक्तों की संगति का अवसर। तो ये वास्तव में ये जो सारे अवसर है वही जीव के लिए असली प्रसंग है।
जीव के सुख के लिए ये उपाय है। जिस किसी भी प्रकार जीव भगवान के सानिध्य में जाए ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कहते हैं सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए, लेकिन इससे बढ़िया ढंग से करो रथ के सामने कीर्तन और नर्तन पूरी यात्रा में चलना चाहिए। प्रभुपा जी कह रहे हैं तो इन सबको आप इतना बढ़िया ढंग से करो कि जितना तुम कर सकते हो और भगवान जगन्नाथ इसी से संतुष्ट होंगे। क्योंकि श्री प्रभुपाद महाराज जानते हैं कि श्री भगवान बहुत कम किए हुए को बहुत ज्यादा करके मान लेते हैं, और इसे उल्टी चीज जगत में दिखाई पड़ती है। कितना भी अपने स्नेहियों के लिए आप करो फिर भी गाली सुनो, अरे यार बूढ़े ने कुछ नहीं किया। या कभी कभी बूढ़े लोग ऐसा सोचते कि हमने पुत्रों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि भगवान नहीं दिया ना, उनको लगेगा सच कि अरे रे मेरा तो दिया हुआ तो कितना दिन चलेगा, ये तो बहुत कम दिया है, बैंक का बैलेंस तो भी कुछ हुआ ही। एक हमको हमारे गुरु भाई के पिता सोचते थे, अभी तो वो नहीं है, वो चले गए, लेकिन वो सोच रहे मैं उनको बोला अरे आपके पुत्र के लिए आपने बहुत किया। अरे बोले मैंने कुछ नहीं किया, लोगों के पास तो बैंक है, उन बेटे को बैंक देते हैं पूरा, लेकिन मेरे पास तो कोई इतना प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं किया। वास्तव में वो दुखी थे, तो मैं उनको बोला देखो आपका बेटा भक्त हो गया। बोले भक्त से क्या होगा, उनके दिमाग में मतलब सबसे बड़ी संतुष्टि आपको ये रखना चाहिए कि आपका बेटा भक्त है। बोले भक्त से क्या हो, कुछ कमाना चाहिए ना, तब आगे जाकर सुखी रहेंगे। तो उनकी समझ ऐसी थी, अपनी समझ से लोग व्यवस्था करते हैं, समझ ही नहीं है कि कैसे जीव को सुखी किया जाए, पुत्र को सुखी किया जाए, ऐसे व्यवस्था करते हैं। इसलिए भक्त लोग अपने पुत्रों के लिए भक्ति की व्यवस्था देकर के जाते, सबसे बड़ा अवसर प्राप्त कराना चाहते हैं उनको, वही आनंद अवसर है। सबको अवकाश मिलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महाराज कहते हैं अगर ये इस प्रकार आप लोग करेंगे तो जगन्नाथ जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, जगन्नाथ जी संतुष्ट होंगे, भक्तों ने बहुत किया। तो वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी सेवा है कि दूसरे जीवों को अवसर दे दिया जाए, ये भक्ति कराने का अवसर देना, ये बहुत बड़ी भगवान की सेवा होती है। क्योंकि भगवान की इच्छा है कि जीव उनके भक्त बने, तो भगवान की सेवा हुई ना, दूसरों को भक्ति में लगा ना, ये तो भगवान की सेवा है। और ये जगत भगवान ने इसलिए बनाया है, ये थोड़ी हमारे भोग के लिए बनाया है, ताकि जीवों को अवसर मिले अपने भोगों को भोगते हुए, कर्म फल को भोगते हुए जल्दी से मनुष्य शरीर प्राप्त करें, मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसलिए भगवान इस जगत को चलाते हैं। तो भक्त लोग भी इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रियाएं पसंद करते, अर्थात भगवान की भक्ति। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा करने से आपके ऊपर भी भगवान जगन्नाथ संतुष्ट होंगे। अगले दिन तीसरे पैर की शांत बिला में प्रभुपाद अपने कमरे में माला फेरते हुए बैठे थे। उपेंद्र उनके साथ और कीर्तनानंद पाकशाला में भोजन बना रहे थे। सहसा प्रभुपाद जी ने मंजरियों की झनकार सुनी और वे प्रसन्न उठे, उनके नेत्र विस्फारित हो गए। बाहर की ओर झांक कर उन्होंने रथ यात्रा का तक देखा। देखिए भक्त लोग कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान का कीर्तन इत्यादि सुन करके वो प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये देखा और खूब प्रसन्न हुए, उनके नेत्र विस्फारित थे।
तरस रहे थे भगवान जगन्नाथ को, आज अमेरिका में लोग दर्शन करेंगे, अमेरिकन लोग दर्शन करेंगे, चकित होकर के वो भगवान को देख रहे थे। बाहर की ओर जाकर उन्होंने रथ यात्रा कर्तक को देखा, जिसमें भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलराम आसीन थे। दर्जनों भक्त और हिप्पी प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए आतुर थे। सब लोग चाहते थे कि प्रभुपाद जी आकर के रथ यात्रा में शामिल हो, लेकिन उनका तबियत नहीं था, इसलिए वो जल्दी बाहर नहीं निकले थे। तो वो सब लोग चाहते थे, आतुर भी थे कि निकले। उनका अभिवादन करने के लिए वे बाहर गए और विग्रहों को भक्तों के द्वारा अंदर लिवा लाए और उन्हें पियानो के ऊपर स्थापित कराया। भक्त समुदाय और अतिथि अंदर आने लगे, कमरा पूरा भर गया। मुस्कुराते हुए प्रभुपाद जी ने कुछ लोगों का आलिंगन किया, जबकि अन्य लोगों ने उनके चरणों में अभिवादन किया। लगता है कि यह रथ यात्रा के पूर्व की तैयारी है, जगन्नाथ जी को अभी ले जाना बाकी है, ट्रक बाहर तैयार है, भक्त लोग कीर्तन करते हैं। तो उन भगवान को ला करके एक बहुत बड़ा पियानो रखा हुआ था कमरे में, उनके ऊपर बिठाया गया। तो कुछ भक्त पाकशाला में कीर्तन की मदद करने में लग गए, और जिससे उसके द्वारा तैयार किया गया भोजन वितरित हो सके। अन्य रथ यात्रा उत्सव की सफलता पर अपने विवरण देने लगे। यह महान था, यह आश्चर्यजनक था, यह बहुत सुंदर, कैसे लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर था, उन्होंने कहा। और भक्तों द्वारा किए गए उत्सव के वर्णन को सुनकर प्रभुपाद जी गदगद हो गए। ये जो नया छपा हुआ ग्रंथ को रखना चाहिए पढ़ाई के लिए, जल्दबाजी में छाप दिए हैं, इधर उधर कुछ छपाए हो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं उस ग्रंथ को, थोड़ी थोड़ी बार में इधर उधर बात पलट जाती है। मुकुंद हयग्रीव हरिदास और महिलाओं में से कुछ विग्रहों के साथ गाड़ी में थी और यमुना की हारमोनियम ध्वनि सहित अन्य बाजों की ध्वनियों को माइक्रोफोन से प्रसारित किया गया था। सड़कों पर हर एक ने इसे पसंद किया। साथ में चलती मोटर में बैठी पुलिस ने भक्तों से जल्दी कराने की कोशिश की थी। सब यात्रा का ब्यौरा दे रहे हैं। तो इस प्रकार लगभग एक घंटा हो चुका है इनका पाठ करते हुए, प्रभुपाद जीवनी का पाठ करते हुए। लेकिन मैं तो सूचन तो नहीं दे सकता, लेकिन एक निवेदन करूंगा अवश्य कि क्यों नहीं वृंदावन की तरह उन एकादशी के दिन प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा दिया जाए, है कि नहीं? क्योंकि एक तो ये जीवनी इधर उधर से पाठ करते हैं, और ये जीवनी जो यहाँ पाठ कर रहे वो लिखने का भी उतना ढंग से, वो छपाई नहीं, लिखा होगा बराबर, लेकिन इतना छपाई ढंग से नहीं हुआ है। इसको पढ़ने से ये लोगों के माइंड में जाएगा नहीं जीवनी प्रभुपाद जी। खैर हमारा तो ये थोड़ा ऐसा इच्छा है कि उसकी जगह दोनों एकादशी को, और गुरुवार को भागवतम ले, गुरुवार को पढ़ते प्रभुपाद जी का क्लास है प्रत्येक गुरुवार को, उसकी जगह दो क्लास कर दिया जाए प्रभुपाद जी का प्रत्येक एकादशी को, जैसे वृंदावन में मैं देखा हूं। ये कोई नया वो नहीं है, वृंदावन में मैं देखा प्रत्येक एकादशी को प्रभुपाद जी का क्लास रखते हैं, उनकी कैसेट लगा करके जो भक्त आते हैं वो लोग सुनते हैं। और ये वास्तव में ये ठीक है, क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन कभी कभी नए लोग भी आ जाते हैं, तो प्रभुपाद जी का लेक्चर चलेगा हिंदी में ना, सब लोग सुनेंगे, ये उचित रहेगा। और कमलोचन प्रभु भी शायद ये बात को कहे थे कि कौन सुनते हैं, सब लोग नींद ज्यादा मारते हैं। प्रभुपाद जी का जो पाठ चलता है जीवनी का, तो वो ठीक से लोग सुन, पर ऐसा तो मैं नहीं, आप लोग तो सुन रहे हैं चौकन्ना होकर के। कोई प्राय सोता नहीं है, लेकिन फिर भी विचार अगर वृंदावन की तरह किया जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, श्री प्रभुपाद की, लीलामृत की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जय जगन्नाथ देव बलभद्र सुभद्रा जी, श्री गौर निताय की, जय निताय गौर हरि प्रमानंदे। ये कुछ नया है।